परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से प्रातःकाल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ उसका सप्तम अध्याय तृप्तिदीप प्रकरण उसके ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल विचार चल रहा था जो मन है बहुत चंचल है, बलवान है, दृढ़ है, तो उसको निग्रह करना बहुत कठिन है। एक जगह पे स्थिर करना मन को बहुत कठिन है, तो इसलिए वहां वशिष्ठ जी रामायण में लिखे हैं कि चाहे कोई बलवान व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति समुद्र का तो पान कर सकता लेकिन मन को निग्रह नहीं कर सकता। सुमेरु पर्वत को भी हाथ से उखाड़ सकता है लेकिन मन को निग्रह नहीं कर पाएगा। धधकती हुई जो अग्नि है उसका भी भोजन कर सकता है, जैसे लोग भोजन करते ना ऐसे भोजन कर सकता है लेकिन मन को निग्रह नहीं कर पाएगा, बहुत कठिन है। तो जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि में भी सविकल्प निर्विकल्प समाधि, इस क्रम से जो चलते हैं तभी भी बहुत कठिन है। मन को किसी एक जगह पे स्थिर करना बहुत कठिन है, लेकिन उससे विलक्षण कथा आदि में मन को आप टिका सकते हैं। देखिए पंचदशी कार्य इतने हितकर वचन बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अभी योगासन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, जितने यहां बैठे हैं ना रिटायर्ड पार्षद, इनको यदि अब कहा जाए शीर्षासन करिए तो शीर्षासन करेंगे क्या आप लोग? नीचे बैठने के लिए कहेंगे तभी भी नहीं बैठ सकते, 10 मिनट के बाद कमर में दर्द, घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा, कठिन है। आसन प्राणायाम आदि करना बहुत कठिन है, लेकिन वेदांत श्रवण कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? वेदांत श्रवण जो है हर व्यक्ति कर सकता है, केवल यहां बैठ करके नहीं, घर में भी चिंतन कर सकते हैं बैठ करके, लेटे लेटे भी चिंतन कर सकते हैं। इसीलिए दूसरे जो साधन बतलाए हैं उन साधनों से विलक्षण है वेदांत चिंतन करना, आसान है, बहुत आसान है। उसको आगे कहते हैं प्रकृति ततो वैषम्यम दर्शयति, दूसरे साधनों से विषमता विलक्षणता जो है कथन आदि में दिखाते हैं। कैसे है थोड़ा सुनेंगे तो आपको और स्पष्ट महसूस होगा। श्लोक नंबर 122, 21 कल हो गया था ना, 21 अप्यब्धिपानाद महतः सुमेरुन मूलनाद अपि अपि बन्यसनात साधो विषमश्चित्त निग्रह अपि अब्धिपानात महतः, महतः अब्धिपानात, अब्धि कहते हैं समुद्र को, उसके जल को पान करना, सुमेरों को हाथ से उखाड़ना और बन्ही का सेवन करना, जैसे सरल है विषम चित्त निग्रह, चित्त का निग्रह करना विषम है, कठिन है। तो उससे विलक्षण दिखाते हैं प्रकृति ततो वैषम्यम दर्शयति। 22वां श्लोक देखिए, कथनादो न निर्बन्धः श्रृंखलाबद्ध देहवत् किन्त्वनन्तेतिहासादै विनोदो नाट्यबद्ध्यः। श्रृंखलाबद्ध देहवत कथनादो न निर्बंध। श्रृंखला से कोई व्यक्ति अपने शरीर को बांधा हुआ है, जैसे पुलिस वाले चोर आदि दुष्ट व्यक्तियों को बांध करके रखते हैं। जैसे श्रृंखलाबद्ध देहवत कथनादो न निर्बंध, कथन में कोई बंधन नहीं है, श्रवण में कोई बंधन नहीं है, लेकिन कथन में और ज्यादा आनंद आता है। क्या आता है? किंतु अनंत इतिहासादेर नाट्यवत धियः विनोदो। इतिहास आदि शब्द से इसमें तत्व चिंतन आदि बतलाए हैं, तत्चिंतनम तत्कथनम। तो इतिहास शब्द से यहां लिए, जैसे वशिष्ठ रामायण है, मोक्ष धर्म है, सूत्र संहिता आदि है, ऐसे चीजों का जब आप श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसे बुद्धि जो है प्रसन्न हो जाती है। अब कैसे प्रसन्न हो इसमें बतलाएंगे टीका में। जैसे कोई व्यक्ति नाटक देखता है, नाट्यवत नाटक देखेंगे तो व्यक्ति नाटक को देखते देखते बहुत खुश हो जाता है। अब कभी उसके आंसू भी बह सकते हैं, कोई मुस्कुरा भी सकता है, कोई खिलखिला करके भी हंस सकता है। बुद्धि का विनोद उसी में होता है। और आपको यदि शीर्षासन करने के लिए कहेंगे तो बुद्धि का विनोद होगा क्या? लेकिन श्रवण करेंगे तत्व का शास्त्र में जैसे जैसे बताए हैं, तो श्रवण करने से बुद्धि खिल जाती है, प्रसन्न हो जाती है। कैसे? उसको टीका में बतलाए हैं, कथनादो इति श्रृंखलाबद्ध देहस्य यथा निर्बंधः न तथा कथनादो इत्यर्थः। बेड़ियों से बंधे हुए जो शरीर होगा वो हिल नहीं सकता, जहां बंधा हुआ है वहां वो पड़ा हुआ रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति के पैर भी बांध लेते हैं, हाथ भी बांध लेते हैं, तो जहां बंधा हुआ है उसे आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उससे विलक्षण है शास्त्र चिंतन करना। शास्त्र चिंतन में कोई बंधन नहीं है। नहीं, जो छोटा लड़का है वो सुन सकता है, बूढ़ा व्यक्ति नहीं सुन सकता है। जो जवानी है वो सुन सकता है, बूढ़ा व्यक्ति, सबके सुनने का अधिकार है, कोई भी श्रवण कर सकता है। तो इसी प्रकार यहां कहते हैं आदि शब्देन तत्त्व चिंतनादिकं गृह्यते। इतिहासादि आदि शब्द उसमें जो दिए हैं उसके द्वारा तत्चिंतनम तत्कथनम तत्न्यून्यम प्रबोधनम एतदेक परत्वम च ब्रह्मभ्यासम विदुर बुधा। इसके पहले जो श्लोक आ गया था, तो आदि शब्द से कथन, चिंतन, प्रबोधन सबको ले लेना उसमें। न केवलम निर्बंध अभावश्च प्रत्युतो धियो विनोद इत्याह। केवल बंधन का अभाव ऐसी बात नहीं है, बुद्धि जो है प्रमुदित हो जाती है, बुद्धि खिल जाती है। कैसे खिलेगी? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। एक बार एक बहुत शक्तिशाली राजा थे भारत में, बहुत धार्मिक, न्यायवादी, प्रजा हितैषी, प्रजा के सुख दुख में सुखी दुखी होते थे, प्रजा के लहू को पोंछते थे, उनके हित के लिए ही कार्य करते रहते थे। जवानी में उनके माता पिता उनकी शादी करवा दिए, घर में बहू आ गई, लेकिन राजा का मन बहू के साथ मिलता नहीं था। तो उनके माता पिता दूसरी शादी करवा दी। दूसरी शादी जब हो गई तो फिर थोड़े से मन तो लगता था, लेकिन इतने पत्नी के साथ ठीक संबंध नहीं बनता था। दूसरी शादी भी हो गई, अब उसके साथ में थोड़ा सा कुछ हद तक जो है मन लगता था। अब चौथी शादी हो गई उसके साथ उनका खूब मन लगता था। चौथी जब शादी हो गई, पहले राजा लोग ऐसे भी कई शादियां करते थे, तो जो चौथी थी वो सवेरे शाम उसके साथ उठते थे, बैठते थे, खाते पीते रहते थे, हर आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे, जो भी जरूरतें थी उसको परिपूर्ति करते थे। अब इस प्रकार समय अतिवाहित होता गया और शरीर एक लिमिट के लिए है। भगवान से हम लोगों को जो शरीर प्राप्त हुआ है, एक ना एक दिन मृत्यु होगी कि नहीं होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो अंतिम मुमूर्षु अवस्था में थे। जब मुमूर्षु अवस्था में थे तो उनको लगा कि यार मैं अभी साथ में जो है ना, जिस पत्नी को बहुत प्रेम करता हूं उसको साथ में लेकर के जाऊंगा। तो जो चौथी पत्नी थी जिसको अत्यधिक प्रेम करते थे उसको पास में बुलाए कि देखिए प्रिय, अभी मैं तो जाने वाला हूं तो आप भी साथ में चलिए। तो उनकी पत्नी बोली, आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते, मैं क्यों जाऊं आपके साथ, मना कर दी। अब मना कर दिए तो बहुत दुखी हो गए, इसके लिए मैं कितने समय दिया, क्या क्या नहीं किया इसके साथ, जो भी चाहती थी सब देता था, लेकिन अभी अंतिम समय ये मुंह मोड़ ली। चलो कोई बात नहीं, दूसरी पत्नी को बुलाए तो भाई कम से कम तुम तो साथ में चलो। उनकी दूसरी पत्नी बोली, आप चले गए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। राजा बहुत दुखी हो गए। अब दूसरी पत्नी को भी बुलाए, चौथी मना कर दी, तीसरी मना कर दी, दूसरी पत्नी को बुलाए वो भी मना कर दी, और उनके बगल में जो है प्रथम पत्नी बैठी थी वो बोली कि मैं आपके साथ जाऊंगी। उसको बिना पूछे नहीं, उसको बिना पूछे वो बोली कि मैं आपके साथ जाऊंगी। राजा की आंखों से आंसू टपक पड़े कि जिसको मैंने अनदेखा किया, नजरअंदाज किया, ध्यान नहीं दिया, वो जाने के लिए तत्पर है, लेकिन जिन लोगों के लिए मैंने इतने समय दिया, मेरी शक्ति क्षय हो गई, सब परिपूर्ति उनकी की, जो भी मांगे थी, उनकी इच्छाएं थी, सबको मैंने समाधान किया, वो सब जैसे जो है मुंह मोड़ लिए। ये दृष्टांत है, इसका दृष्टांत में है। चार पत्नी का मतलब होता है जो चौथा पत्नी है वो शरीर है। क्या है? व्यक्ति सवेरे से जब उठता है ना, तब से शरीर की जो भी आवश्यकता है उसको परिपूर्ति करने में लगा हुआ रहता है। खिलाना पिलाना, सजाना, घुमाना फिराना, शरीर के लिए तो सब करता रहता है व्यक्ति, लेकिन क्या अंतिम समय में शरीर साथ में जाएगा? अंतिम समय में शरीर साथ में नहीं जाता है। उसकी जो तीसरी पत्नी है संपत्ति, आज आपके हाथ में है तो कल दूसरे के हाथ में चली जाएगी, तो इसलिए बोलती है कि आप चले गए तो मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी। तो संपत्ति भी साथ में नहीं जाती है, तीसरी पत्नी भी नहीं जाती है। जो दूसरी पत्नी है ये सगे संबंधी हैं, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, पुत्र है, बंधु है, मित्र है, सारे सगे संबंधी हैं, स्वार्थ से संबंध रखते हैं। क्या वो भी साथ में जाएंगे? क्या नहीं जाते। लेकिन आत्मा जो है आपके साथ में है, साथ में रहेगी, वही साथी है। लेकिन आत्मा के प्रति व्यक्ति अभी तक सजग नहीं हुआ, जिससे आप कभी बिछुड़ नहीं सकते, हट नहीं सकते, उसके प्रति आप अभी तक ध्यान संकेंद्रित नहीं किए। तो इसीलिए कहानी के माध्यम से भी उसमें परमात्मा का चिंतन हो जाता है। सुनते हैं आप कहानी, लेकिन वो कहानी परमात्मा को संकेंद्रित करने के लिए आपके मन को आकर्षित करता है। इसलिए यहां कहते हैं न केवलम निर्बंध अभाव प्रत्युत धियो विनोद, कहानी सुनेंगे तो बुद्धि पहले खिल जाती है। कोई भी कहानी सुनेंगे ना, कहानी से मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन उस कहानी के जो लक्ष्य है, कहानी जिसको बताना चाहती है, उसको जब आप समझ जाते हैं तो बुद्धि जो है और प्रसन्न हो जाती है। इसलिए तत्व कथन में बुद्धि कभी निरस नहीं होती है। इसलिए जो जानकार व्यक्ति है ना, हर चीजों को ऐसे मोड़ करके परमात्मा तब ले जाते हैं। इतिहास इसलिए यहां कहे विनोद इति आह किंतु इति किंतु इतिहास पूर्वेशाम कथा, पहले जो कथा हो चुकी है ऐसी कथाएं हैं। तो यहां कथा से अधिकतर शास्त्र के कथा इसमें है, तो इसलिए वशिष्ठ रामायण में पढ़ेंगे, उसमें ज्ञान वैराग्य की कथा है। दूसरी बात मोक्ष धर्म है कि जिसके माध्यम से आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, ऐसे ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। सुत संहिता है, सुत संहिता का एक बार शायद मंडलेश्वर जी महाराज यहां प्रवचन किए थे लगता है सुत संहिता के ऊपर। तो उस प्रकार ऐसी चीजों का यदि आप श्रवण करेंगे अथवा चिंतन करेंगे तो मन परमात्मा में संस्थित हो जाता है। इसलिए यहां इतिहास पूर्वेशाम कथा आद्या एशाम, उसमें क्या लिखा है, तेशाम लिखा है क्या, एशाम करियो उसको, एशाम लौकिक कथा, उसमें और एक ककार देना पड़ेगा, लौकिक और एक कवल उसमें जोड़ना पड़ेगा, कथा लौकिक कथानुकूल युक्ति दृष्टांत प्रदर्शनादीनाम ते अनंता असंख्यास्ताश्च ते इतिहासाद्यश्च इति अनंतेतिहासाद्याः तैः धियः बुद्धेः विनोदः क्रीड़ा विषयो भवति। इसमें कहते हैं जो पहले की जो कथाएं हैं, पहले की जो कथाएं हैं उसमें क्या है, लौकिक कथा, उसमें लौकिक कथा भी है, अनुकूल युक्ति दृष्टांत प्रदर्शनादिनाम, और अनेक प्रकार के दृष्टांत उसमें दिया जाता है, किसी चीज को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, क्योंकि तत्व जो है बहुत कठिन है, उसको यदि आप सीधे सीधे बता देंगे तो हो सकता है हर व्यक्ति उसको समझ नहीं पाए। जो सतपात्र होगा वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो सामान्य बुद्धि के व्यक्ति होगा उसके अनुकूल दृष्टांत जब देंगे तो तुरंत समझ जाता है। तो इसी प्रकार यहां तीन चीजों को लिया, लौकिक कथा, अनुकूल युक्ति और दृष्टांत प्रदर्शनादि नाम ते अनंता असंख्या ताश्च ते इतिहासाद्याश्च इति अनंत इतिहासाद्याः। अनंत इतिहास जो श्लोक में आया था ना, उसको यहां व्याख्या किए कि उसमें तीन चीजों को लेना है, एक तो लौकिक कथा और अनुकूल युक्ति दृष्टांत प्रदर्शन, तीनों के माध्यम से बुद्धि जो है प्रसन्न हो जाती है। सीधे सीधे तत्व यदि कहेंगे तो हो सकता है बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसी से तैः धियः बुद्धेः विनोदः, बुद्धि विनोद करने लगती है, क्रीड़ा विषयो भवति, बुद्धि उसमें रमण करना शुरू कर देती है, सुन करके कहानी सुनेगी और सुनते सुनते तत्व का बोध होगा। सुनना है आपको कहानी, वो कहानी का लक्ष्य जो है तत्व को प्रकट करना है। तो इसी प्रकार तत्र दृष्टांतः नाट्यवद इति। नाटक जैसे आप देखेंगे नृत्य क्रिया निरीक्षणम एव इत्यर्थः। जब आप कोई नृत्य आप देखते हैं तो नृत्य देखते देखते मन प्रसन्न होता है कि नहीं होता है? आप कभी देखेंगे ओडिसी नृत्य है तो उसमें कोई ना कोई संस्कृति को लेकर के, महाभारत को लेकर के, रामायण, वो अपने एक्शन से ही उसको दिखाएंगे, एक्शन से ही दिखाएंगे उन सब चीजों को, आंखों से अंगुलियों से उसको दिखाते हैं। तो जब आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा तो बुद्धि जो है बहुत प्रसन्न हो जाती है। ठीक इसी प्रकार शास्त्र में जब दृष्टांत दिया जाता है, वो कोई कथा कही जाती है और उसके माध्यम से तत्व को बतलाया जाता है, तुरंत बुद्धि उसको समझ जाती है, बुद्धि जो है पकड़ लेती है उस चीज को। पहले तक तो मैं समझ नहीं पा रहा था, अभी समझ में आ गया ऐसे लगेगा। तो इसी प्रकार कथनादों में कोई बंधन नहीं है, जैसे ध्यान आदि करने में बंधन है। ननु कथनादि भी रपि तत् एक परत्व विघात स्यात् इति आशंका। कहते हैं आप यदि कथा वगैरह कहेंगे तो उसमें कहां एक परत्ता होगी, कथा में तो मन विक्षिप्त हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। आप कहानी कहेंगे तो वहां एक निष्ठता कहां आती है, आत्मस्थिति नहीं बन पाएगी, वो कथा में मन इधर उधर चला जाएगा। ऐसी आशंका होने पर उस आशंका को निवारण करने के लिए आगे के श्लोक में उसका समाधान देते हैं। चिदेवात्मा जगन्मिथ्ये चत्र पर्यवसानक वसानतः। वहां नकार करना पड़ेगा, क्री लिखा है वसानतः, क्री को हटा करके नकार करिए, पर्यवसानतः। चत्र पर्यवसानतः निदिध्यासन विक्षेपो नेतिहासादिभिर्भवे। चिदेव आत्मा जगन मिथ्या इति अत्र पर्यवसानतः। शास्त्र में अथवा जो कहानी आदि में जिसको यहां बतलाएं, जो इतिहास आदि है, उसमें लक्ष्य क्या है? चिदेव आत्मा, जो चैतन्य है वो आत्मा है, जगत मिथ्या है, इसके बारे में दिग्दर्शन दिया गया है। वो इधर उधर की कहानी नहीं है, जैसे आजकल के सिनेमा वगैरह है, नोवेल वगैरह आप पढ़ते हैं, माने कुछ लोग पढ़ते हैं तो उसमें मन जो है विक्षिप्त हो जाएगा, उसके जैसा नहीं है। चिदेव आत्मा जगत मिथ्या इति अत्र पर्यवसानकृत, उसी में ही मन को पर्यवसन किया गया है। इतिहास और इसमें लौकिक कथा भी जो आएगी और दृष्टांत भी जो दिया जाएगा, उसको केवल मन को आत्मा में स्थिर करने के लिए, इधर उधर के चीजों को उसमें नहीं लिया जाता है। तभी जैसे जीएसटी लगाए अभी, तो एक व्यक्ति क्या कहा कि भाई जीएसटी क्या चीज है, कुछ समझ में नहीं आता है, जीएसटी क्या चीज है उसको समझ में नहीं आता है। तो एक महात्मा इस चीज को थोड़ा सा अलग प्रकार से कहे, जीएसटी समझ में नहीं आता है, कहे तो महात्मा कहे क्या आपको भारत के संविधान समझ में आता है? अब तक सेल टैक्स इनकम टैक्स अभी आपको समझ में आया? अपने पत्नी को अभी समझ पाए? पत्नी पति को समझ पाए? आप संसार में क्यों आए इसको अभी तक समझ पाए क्या? जब समझ नहीं पाए तो जीएसटी के चक्कर में क्यों पड़े? लेकिन शास्त्र चिंतन करने से अपने आप को आप समझ सकते हैं, आप स्वयं क्या है शास्त्र उसमें बतलाता है। तो इसलिए जितने भी दृष्टांत आदि है इसके माध्यम से चैतन्य आत्मा है और जो दृश्यमान जगत है ये मिथ्या है, इसी में ही बुद्धि को उसमें स्थिर करने के लिए कोशिश किया गया है। पर्यवसानतः इतिहासादिभिर विक्षेपो न, कहते हैं इतिहास आदि में विक्षेप नहीं है, इसी से निधिध्यासनम भवेत, उसे निधिध्यासन हो जाएगा। जैसे जैसे बतलाते हैं उसके अनुरूप यदि आप चिंतन करते करते जाएंगे तो वहां विक्षेप नहीं होगा, निधिध्यासन हो जाएगा आपका। बुद्धि के माध्यम से आप स्वयं क्या है वो निश्चय हो जाए। निधिध्यासन का अभिप्राय होता है निश्चय करना। जैसे मैं मनुष्य हूं इसको निश्चय करने के लिए रोज जप करना पड़ेगा क्या? मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, ऐसे करना पड़ेगा? एक बार जब निश्चय हो जाएगा तो उसके बाद आप चाहे सोते रहिए और सावधान रहिए, चाहे कैसे भी रहेंगे, आप अमुक के पुत्र, तुरंत आपका मन जो है एकाग्र हो जाता है, हां बिल्कुल मैं उनके पुत्र हूं। जैसे वहां निधिध्यासन हो जाता है, निश्चय एक बार हो जाता है तो फिर डोलता नहीं है। तो शास्त्रों के माध्यम से निश्चय कराते हैं कि आप चैतन्य है, सर्वव्यापक है, विकल्प रहित है, सबके अंदर में आप ही हैं। इस प्रकार जब निश्चय हो जाएगा, जैसे सुन लीजिए रामकृष्ण परमहंस थे और रामकृष्ण परमहंस को सबसे ज्यादा पसंद जो है पकोड़ा, पकोड़ा खाने में बहुत रुचि लगती थी। कोई भी व्यक्ति जाए कहेगा परमहंस जी आज हमारे घर में पकोड़ा, चलिए चलते हैं, पकोड़ा बनाया बस, वो सब छोड़ छाड़ करके पकोड़ा खाने के लिए जाते थे। तो अंतिम समय में उनको कैंसर हो गया था, कैंसर हो गया था तो कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ लिक्विड वगैरह उनको देते थे। अब संयोग से एक दिन उनके आश्रम में भंडारा था और पकोड़ा बना था, पकोड़ा बनाया गया था। तो एक बहुत क्लोज उनके शिष्य थे और उनको पता है कि परमहंस जी को बहुत पसंद है पकोड़ा, और उस दिन पकोड़ा बना भी है लेकिन परमहंस जी खा नहीं सकते, वो खा नहीं सकते, उनको तो कुछ लिक्विड वगैरह दिया जाता था उस समय। तो आकर के परमहंस जी के पास बैठ करके रोने लगा। परमहंस जी पूछे अरे रो क्यों रहे हो? तो वहां कहे कि देखो सारे पत्तलों में भंडारा चल रहा है, पकोड़ा रखे हैं, महाराज आपके सबसे रुचिकर पसंदीदा पदार्थ जो है आज बना हुआ है, लेकिन आप जो है खा नहीं सकते, इसीलिए मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है। और उनके आंखों से आंसू बह गए, वो जो शिष्य था। तो परमहंस जी थोड़ा सा मुस्कुराए, कहे अरे सबके मुख में मैं ही तो खा रहा हूं, सबके मुख में मैं ही खा रहा हूं। तो इस प्रकार तत्व निश्चय हो जाता है कि सबके अंदर मैं हूं। अहम आत्मा गुणा केश सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण भूतों के हृदय में मैं ही हूं, ऐसा उसको बोध होगा। तो इसी प्रकार यहां इतिहास आदि के द्वारा विक्षेप नहीं होगा, निधिध्यासन भवेत, उससे तो निधिध्यासन उसका हो जाएगा। चिदे वेति टीका में इतिहासादीनाम आत्मा चिन्मात्र रूपो न देहादि रूप, इतिहास आदि के द्वारा आत्मा के बारे में ही कथन किया गया है, न देहादि रूप देह आदि का वर्णन उसमें नहीं किया गया। जगत च मिथ्या, और उसमें क्या वर्णन है, जो जगत है वो मिथ्या है। इति एतस्मिन अर्थे पर्यवसानात्, इसी में ही उसको पर्यवसान किया गया है, स्थिर किया गया है। न तेहि एतदेक परत्व शब्दाभिधेयस्य निरिध्यासनस्य विक्षेप इत्यर्थः। इसलिए वहां जो एक परता होने वाली है, शब्द के द्वारा जो कथन किया गया है, निरिध्यासन होगा, विक्षेप नहीं होता है। न शब्द को आगे जोड़ना है, न विक्षेप इत्यर्थः, निरिध्यासन ही होगा, विक्षेप नहीं होगा। तो यहां शंका करते महाराज, इतिहास आदि को यदि आप अंगीकार करेंगे, कथा कहानी इतिहास, इससे निरिध्यासन जब होता है, तो हम लोग ये कृषि करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, तो इससे कौन सी हानि हो जाएगी? इसी से भी तो निरिध्यासन होगा, ऐसे कोई हानि होगी क्या? ऐसे शंका उठाते हैं, उसका समाधान नहीं। ननो इतिहासादीनाम अंगीकारे कृष्यादेर अभी प्रसक्ति सदी आशंका। इतिहास को यदि आप स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो कृषि आदि की भी प्राप्ति हो जाती है, प्रसक्ति। ऐसी आशंका होने पर उसके ऊपर समाधान देते हैं श्लोक में, कृषि वाणिज्य सेवादो काव्य तर्कादिकेषु च विक्षिप्यते प्रवृत्त्याधीः तैस्तत्त्वस्मत्य संभवा। कृषि वाणिज्य सेवादो काव्य तर्कादिषु च प्रवृत्त्या विक्षिप्यते धीः तैः तत्त्वस्मृति असंभवात्। इसमें कहते हैं कृषि करेंगे, वाणिज्य करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा का मतलब गुरु सेवा नहीं, यहां नौकरी वगैरह है, सेवा शब्द से नौकरी करेंगे, और उसमें 50 लोगों के हिसाब आप उठेंगे बैठेंगे, 50 प्रकार की बातें सुनेंगे, मालिक डांट रहा है, जो संग साथी है आपको द्वेष करते हैं, ये करते हैं, ये सब जब चलेगा वहां, और काव्य तर्क आदि शास्त्र पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, इनकी प्रवृत्ति यदि होगी तो धी ही विक्षिप्यते, बुद्धि जो है विक्षिप्त हो जाती है। विक्षिप्त जब हो जाएगी ते ही तत्व स्मृति असंभवात, जो तत्व के स्मरण होना चाहिए वो असंभव हो जाता है, नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, जब व्यक्ति केवल आत्मनिष्ठ होना चाहता है, केवल आत्मनिष्ठ होना चाहता है, महात्मा लोगों के लिए बतलाया गया, शंकराचार्य भगवान कहते हैं, स्नानम शौचम तथा भिक्षा नित्यमेकांतशीलता भिक्षोर चत्वारी कर्माणि पंचमम नोपपद्यते। वो कहते हैं केवल स्नान करना है, शौच करना है, और भूख लगे तो भिक्षा मांग करके खा लेना है, एकांत का सेवन करना है। भिक्षोर चत्वारी कर्माणि पंचमम नोपपद्यते, पांचवा कर्म उसका कुछ नहीं है। अब इस प्रकार जब करेंगे तो तत्वनिष्ठा होती है। वो रामकृष्ण परमहंस के गुरुजी थे, तोतापुरी जी, वो दिन में सो जाते थे, दिन में सो जाते थे और रात्रि में खूब भजन करते थे। रात्रि में, दिन में तो कोई ना कोई आते जाते रहते थे, लेकिन रात्रि में कोई आएगा नहीं, तो एक व्यक्ति पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, दिन को दिन के तरह मनाना चाहिए, रात को रात के तरह, आप तो बिल्कुल उल्टा करते हैं, दिन में सो जाते हैं, रात को बैठ करके तत्व चिंतन करते हैं। तो यही बात बोलते थे, अरे भाई संसारी लोग जब आ जाते हैं ना, और संसार की बात जब करते हैं तो कुछ ना कुछ तो चिपक जाता है कि नहीं जाता है बुद्धि में,
कुछ ना कुछ बुद्धि में संसार जो है चिपक जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा अपने आप को हटा करके बचा करके तत्व चिंतन करना चाहिए कि उनको लगेगा चलो ये प्रमादी महात्मा है, सोता रहता है, तामसिक है। बोलने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या कर रहा हूं ये तो मुझे पता है। पूज्य रामानंद सरस्वती जी महाराज एक बार बतला रहे थे कि वो ओंकारेश्वर वाले उत्तर काशी के ऋषिकेश के ऊपर, तो वहां जब गए तो ये तो बहुत जवान अवस्था में थे। उस समय वो ढूंढ रहे थे कोई अच्छा महात्मा मिल जाए तो शायद मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो किसी ने कहा कि एक महात्मा है पहाड़ के ऊपर रहते हैं, लेकिन मिलते किसी से नहीं हो, किसी से मिलते नहीं है। तो इनको लगा उन्हीं को मिलना है बस, बाकी किसको क्या मिलना है। जिससे कुछ मिले तो उससे मिलना चाहिए। तो बहुत परिश्रम करके पहाड़ के ऊपर एक दिन मन बनाएगा आज तो जाकर के मिलना ही है। अब ये जब गए तो महात्मा उधर से पत्थर मारना शुरू कर दिए, पत्थर मारना शुरू कर दिया। सोचे आ रही तो मैं तो सोचा था कि बहुत बड़ा बहुत अच्छा महात्मा है, ये पत्थर मारना शुरू कर दिया। लेकिन रामानंद स्वामी ने पत्थर जरूर मार रहे हैं लेकिन एक भी पत्थर मुझे लग नहीं रहा है। पत्थर तो मार रहे हैं वो, पत्थर मारेंगे तो झाड़ियों में पत्थर लगता है, आवाज आएगी फड़फड़ फड़फड़, लेकिन मेरे शरीर में नहीं लग रहा है। तो कुछ भी हो मैं मिलता हूं उनको। वो पत्थर मारते रहे, गाली गलौज भी किए, गाली गलौज भी किए, लेकिन उसके बाद उनके पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद महात्मा को देख के साष्टांग प्रणिपात कर दिए और महात्मा मुस्कुरा दिए, अरे तुम बिना डरे कैसे आ गए यहां। महाराज बस आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करने के लिए तो हम लोग तरस रहे हैं, इसलिए आपके दर्शन करने के लिए मैं आ गया। लेकिन आप इतने अच्छे महात्मा होकर के गुफा में रहते हैं, इतने दूर में रहते हैं, आप ये सब क्यों करते रहते हैं, पत्थर मारते हैं। यही तो संसारी व्यक्ति हम लोगों को विक्षेप करते हैं। संसारी लोग जो है विक्षेप करते हैं, उनको बचने के लिए थोड़ा कहीं पत्थर मार दिए इधर उधर साइड में, लोग कहेंगे अरे ये दुष्ट महात्मा है, इसके पास कभी नहीं जाना चाहिए। बस हमारा चिंतन चलता रहता है, लोग नहीं आएंगे तो चिंतन चलता रहता है। तो बोले क्या क्या प्रश्न है पूछो, जब तुम आ ही गए तो प्रश्न क्या है पूछो। तो कुछ प्रश्न पूछे, वो बहुत अच्छा समाधान दिए। कहते हैं उस महात्मा को मैं कभी भूल नहीं सकता। रामानंद स्वामी जी महाराज कहते थे संसार से अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए यहां भी कृषि वाणिज्य आदि जब करेंगे तो मन विक्षिप्त हो जाते हैं, निधिध्यासन उसमें करना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार भी तो आएगा और वो संसार को हटाने में फिर टाइम लगता है। कभी कभी ऐसे बलवान वृत्ति होती है उसको हटाने में बहुत समय लगता है। तो इसी प्रकार यहां कहते हैं स्मृति असंभवात, कृषि वाणिज्य आदि करेंगे तो इसमें स्मृति नहीं बन पाती है, तत्व की स्मृति, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे नहीं बनेगा। कहते हैं इसमें टीका कुछ नहीं है, कृषि इति करके छोड़ दीजिए, स्पष्ट है। ननु कृष्यादिनाम तत्व अनुसंधान विघातित्वेन त्याज्यत्वे भोजनादिरपि तथात्वात् तदपि त्याज्यमेव इति आशंका। तो जैसे कृषि आदि निधिध्यासन नहीं करने देते हैं तो भोजन भी करेंगे तभी भी तो मन विक्षिप्त होगा कि नहीं होगा। स्नान किए, भोजन किए, कुछ करेंगे तो तत्व से तो थोड़ा हटना पड़ेगा कि नहीं हटना पड़ेगा। नित्य निरंतर जो चिंतन चल रहा है उस चिंतन थोड़ा सा स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा गंगा जी में, अभी हम तत्व चिंतन कर रहे थे, तुरंत उसको हटाना पड़ेगा, पांच बज गया थोड़ा गंगा जी जाना पड़ेगा। तो चिंतन से अपने आप को हटाना पड़ेगा कि नहीं, स्नान से शौच करने के लिए जाएंगे मन को हटाना पड़ेगा। तो ये भी तो विक्षेप है। कृषि आदिनाम तत्व अनुसंधान विघातित्वेन, ठीक है कृषि आदि तत्व अनुसंधान के विघातक है, त्याज्य है। भोजनादिरपि, भोजन आदि भी
भोजन स्नान शौच आदि शब्द से इनको भी ले लेना। तथा त्वात अनुसंधान विघातित्वात तदपि त्याज्यम एवं इति आशंका, उसको भी त्याग करना चाहिए, उसको भी त्याग करना चाहिए। उसका समाधान विद्यारण्य स्वामी जी महाराज देते हैं, अनुसंदधते बात्र भोजनादो प्रवर्तितुम् शक्यते त्यंत विक्षेपा भावादासु पुनः स्मृते। अत्र भोजनादो अनुसंधता एव प्रवर्तितुं शक्यते, अत्यंत विक्षेप अभावात पुनः आसु स्मृते। इसमें कहते हैं भोजन आदि में जो आपकी प्रवृत्ति होती है तत्व के अनुसंधान करते हुए भी कर सकते हैं। जब आप भोजन करने जा रहे हैं तो बहुत जगह पे क्या होता है, मौन होकर के भोजन करते हैं। भोजन करने के लिए जाना है तो मौन हो जाते हैं, तो भोजन करते करते भी आप चिंतन कर सकते हैं, अनुसंधा संधता एव। आप भोजन करें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसमें इतना विक्षेप नहीं होता है। भोजन शौच स्नान इसमें आप स्नान करते समय भी मैं हम ब्रह्मास्मि कर सकते हैं कि नहीं, भोजन के समय भी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु थे, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो इतने बोलते थे कि उनकी जो जिह्वा है ना फड़कती रहती थी। तो इतनी आदत हो गई थी। एक व्यक्ति आकर कहा कि महाराज आप शौच करते समय भी हरे कृष्ण कृष्ण इसे, ये तो ठीक नहीं है उस समय। तो कहे मैं भी कोशिश करता हूं बंद करने के, लेकिन ये जो जिह्वा तो हिलती रहती है, मैं क्या करूं। और आपको यदि खराब लगता है तो मैं जब शौच करने जाता हूं तो तुम मेरी जिह्वा पकड़ करके बैठो। अच्छा दूसरी बात है, लैट्रिन करते करते भी सीताराम जी की हो सकता है कि नहीं, राम नाम सत्य हो सकता है कि नहीं, किसी भी समय हो सकता है। तो इसीलिए यहां बताते हैं भोजन स्नान शौच आदि में इतना विक्षेप नहीं होता है, और वो आवश्यक है। बिना भोजन के कोई जिंदा नहीं रह सकता, भोजन तो उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां समाधान देते हैं, लेकिन कृषि वाणिज्य सेवा आदि में, अगर किसी महापुरुष की सेवा करने में तो आपको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन जो नौकरी वगैरह व्यक्ति करते हैं, अब जाना आना मैंने अनेक प्रकार के उसमें व्यवधान उसमें उत्पन्न हो जाता है, कई प्रकार उसमें मत ऐक्य नहीं हुआ तो आपस अपने टक्कर हो जाएगा, तो जब टक्कर हो जाएगा तो रास्ते में वही चिंतन करते करते आप आएंगे कि तत्व चिंतन चलेगा, तत्व चिंतन उसमें दब जाएगा, संसार के चिंतन वहां हावी हो जाता है। तो इसलिए यहां कहते हैं अत्र भोजनादो अनुसंधता एव प्रवर्ततुं शक्यते, अत्यंत विक्षेप अभावात, वहां अत्यंत विक्षेप नहीं होता है, थोड़ा बहुत विक्षेप है भोजन आदि में। इसलिए भोजन करते समय स्वाद नहीं लेना चाहिए, महात्मा लोग कहते हैं स्वाद लेते हुए भोजन नहीं करना। आप यदि स्वाद लिए, कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यंजन बहुत स्वादिष्ट बना है और कम बनाए थे, और आपको जब परोसने के लिए आए तो सबको व्यंजन जो है थोड़ा थोड़ा दिए, सब्जी जो है थोड़ी थोड़ी परसे, और आपको स्वाद लगा, और आप कहेंगे दोबारा जब आएगा ना थोड़ा ज्यादा मांगूंगा, थोड़ा ज्यादा। अब कम पहले से ही बनाए थे, दोबारा वो सब्जी आई ही नहीं, और आपके मन में वही चिंतन चल रहा है, अरे सब्जी तो बहुत अच्छी थी यार, थोड़े
ये भी बहुत कृपण काम करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा बना लेते तो हानि क्या है। अब हम सब्जी की जो स्वाद है इसके चिंतन करें। तत्व चिंतन चल रहा है क्या?
नहीं चल रहा है। इसलिए खाना खाते समय स्वाद लेते हुए नहीं खाना चाहिए। इसलिए महात्मा लोग नियम बना दे, जो स्वाद लगेगा ना उसको कम खाना चाहिए, दोबारा नहीं मांगना चाहिए उसको, पहले से ही नियम बना दी। स्वादिष्ट चीजों को दोबारा नहीं लेना है। तो भोजन करते समय विघ्न नहीं होगा, तत्व चिंतन उसमें चलता रहेगा। फिर भी कहते हैं थोड़ा बहुत तो विक्षेप होता है, आंसू पुनः स्मृति, यदि विक्षेप हो भी गया थोड़ा सा तो पुनः स्मृति बना लेते हैं। भोजन खत्म हो गया और उसके बाद फिर अपने आत्मचिंतन शुरू कर देते हैं। अनुसंधता एव इति टीका में कुत इत्यतः अत्यंत विक्षेप अभावात्, वहां अत्यंत विक्षेप नहीं होता है, उसका अभाव है। विक्षेप अभावो अभी कुत इत्यतः, विक्षेप अभाव कैसे, यदि वहां विक्षेप हो भी गया, आंसू पुनः स्मृते, तुरंत ही फिर तत्व का चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार कृषि वाणिज्य सेवा आदि की अपेक्षा भोजन शौच स्नान में आप तत्व चिंतन करते हुए कर सकते हैं। और अकस्मात यदि बीच में थोड़ा सा टूट भी जाए तो पुनः आप स्मरण दिला सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार यहां बतलाए हैं। इसके आगे विक्षेप अभाव के बारे में उसमें वर्णन करेंगे, उसका चिंतन हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।